نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم نکاح کے مسائل بک میں سے ہم پہلا چپٹر نیت کے مسائل دیکھیں گے النیتو نیت کے مسائل یہ ٹاپک ہمارا ہر موضوع سے پہلے آتا ہے اس لیے کہ نیت بالکل کمپس کی طرح ہوتی ہے کمپس کو سیدھا رکھیں تو انسان بالکل سیدھا جاتا ہے گاڑی چلاتے وقت آپ نے کبھی نیویگیشن سسٹم کو دیکھا ہوگا یا آپ نے اپنے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر لگے ہوئے کئی دو تین قسم کے گول سکرینز ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ہر لحاظ سے اپنی گاڑی کو سیدھا رکھتے ہیں روڈ پہ بھی نظر ہوتی ہے ہماری وہ کیوں تاکہ ہماری گاڑی بالکل سیدھی چلے تو نیت جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ وہی کام کرتی ہے جو کہ ہماری گاڑی کا سٹیئرنگ کرتا ہے تو ہم اس وقت اس کورس کو کرتے وقت اس بک کو اس ٹاپک کو سنتے وقت نیت کی بات کیوں کریں اس کو بھی سمجھ لیجئے دیکھیں کہ ہم سب ماشاء اللہ جو بھی سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا فائدہ دینے کے لیے یا لینے کے لیے وہ سب مختلف پائیں گے اور یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو سیکھنے کی نیت سے آئیں گے وہ سیکھیں گے جو آبزرو کرنا چاہیں گے وہ آبزرو کریں گے جو دوسروں کی مثال ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی کوئی خامیاں نوٹ کریں گے وہ ملے کریں گے تو سب سے بہترین اس وقت کا استعمال کیا ہے کہ ہم سب اس وقت اپنی نیت کیا کریں آپ لکھ سکتے ہیں اپنے اس بک کو پڑھنے کا فائدہ طریقہ کیا ہے کہ جیسے جو بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہیں اس پہ یا پھر آپ کے پاس انفو پیپر ہے انڈیکس پیپر ہے سٹیکی نوٹس ہے کوئی بھی چیز اس پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کیا کریں اور جہاں ڈیٹیل میں جیسے ہمارے انٹروز یا لیکچرز بیچ میں آتے جائیں گے اس کو آپ ایک نوٹ بک پہ کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں پہلی بات کیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے میں حدیث پڑھوں گی آپ لوگ پیچھے پیچھے دہرائیں گے ٹھیک ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، یا جس نے عورت حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی، بس مہاجر کی ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی جس غرض کے لیے اس نے ہجرت کی، اسے بخاری نے روایت کیا. تو کیا پتہ چلا کہ کام ایک ہی ہوتا ہے، کرنے والے مختلف گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ نیت کے بنیاد پہ. لفظ نیت جو ہے نا عربی زبان میں نوا، حدیث میں ہم نے لفظ نوا پڑھا، اگر آپ دیکھیں ما نوا یہ ہے اس کا روٹ نون و یا، نوا کہتے ہیں گٹھلی کو. گٹھلی کیا ہوتی ہے؟ آم کی گٹھلی، چھپی بھی ہوتی ہے نا بیج کو. تو یہاں سے آپ نیت کا اصل رول سمجھیے گا کہ جیسے جس چیز کا بیج ہوتا ہے نا وہی اگتا ہے. مثلا آپ کے پاس کچھ بیج ایسے ہوں کہ جس میں سنترے کے اورنج کے اور لیمن کے مکس ہو گئے ہوں، نہیں پتا چلتا نا، عموماً ایک جیسے ہوتے ہیں. اب کیا کریں آپ، کیسے پتا چلے گا یہ سنترے کے کہ کس کا؟ زمین میں ڈال دیں، کچھ دن کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ بیج کس کا تھا. بس اس مثال کو پلے سے باندھ لیں. ہم دین کا جو بھی کام کرتے ہیں نا، ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ اس کے رزق کو دیکھ لیجئے. اگر ہم اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے خوش ہوں گے، اور اگر نیت کوئی اور گی تو ہمارا پھل عملوں کا ادھر ہوگا. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں فلاں دل کا بڑا اچھا حال اس کے ایسے ہے، غلط ہے. یہ تو ایسے ہے کہ گٹھلی بڑی اچھی تھی درخت نہیں ہے وغیرہ. تو ہمارے جو اعمال ہیں نا، جو ایکشنز ہیں، یہ ہمارے عقیدے اور ہمارے دل کے اندر آنے والے خیالات کا اظہار ہوتے ہیں. دوسری بات، حدیث آپ نے عربی ٹیکسٹ میں پڑھی، मुझे आपके चेहरे पहले से भी खूबसूरत लगने लग गए। भला क्यों? इसकी वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लम की एक खुशखबरी है। आपने फरमाया कि दुआ दी बल्कि कि नदर अल्लाह, अल्लाह तरोताज़ा रखे, खुश रखे, फ्रेश अप रखे उस बंदे को जिसने मेरी हदीस को पढ़ा, फिर उसको याद किया, फिर उसको बिल्कुल उसका एहसास कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि अरबी टेक्स्ट हदीस का पढ़ना और सही तरह से पढ़ना ये किस्म का फेशियल है और फ्री है। इसीलिए आप देखिए कि जो मुहद्दिसीन कराम थे, आयमाए कराम, उलमाए कराम, जो भी दीन का काम करेगा ना, उसके चेहरे पे एक फितरी कशिश आ जाएगी। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ने का एक नक तोहफा है। फिर आ जाते हैं टॉपिक पे, चंद बातें इसमें से करूंगी कि यहाँ देखिए कि आमाल का दारोमदार यानी डिपेंड अपॉन जो आमाल होते हैं हमारे, वो नियतों पर हैं। तो जिसने जिस चीज़ की नीयत की उसको वही मिलेगी। काम एक ही होता है, एक दुनिया ले जाता है, एक आखरत लेता है। जैसे हिजरत कितना खूबसूरत अमल है ना, नबी सल्लल्लाहु अपने साथियों के साथ की, मुहाजर इलल्लाह कहलाए। हजरत इब्राहिम का कौल है कुरान पाक में कि इन्नी मुहाजिरुन इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ हिजरत कर रहा हूँ कि मुझे अपने रिश्तेदारों को, बिरादरी को, उनके बुतों को नहीं पूजना, मैं अल्लाह के लिए चलता हूँ। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए कि हम जो भी हिजरत करें ना, जिस नीयत से करेंगे हमें वही फ़ायदा होगा। पैसा कमाने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे तो वो हिजरत वैसी होगी। इसी तरह हमें अपनी चंद आदात बड़ी पसंद होती हैं, लेकिन जब हम अल्लाह के कलाम से जुड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये ठीक नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है, तो फिर हम उनको छोड़ देते हैं। हिजरत सबने की, वो अल्लाह के रास्ते के मुहाजिर बने। इसी तरह नबी सल्लम के दौर में एक सहाबी थे, मतलब एक शख्स थे, तो उन्होंने एक औरत उम्मे कैस उसका नाम था, उससे शादी करने के लिए हिजरत की। तो लोगों ने उनका नाम क्या डाल दिया? मुहाजर उम्मे कैस, कि ये औरत से शादी करने के लिए आया है। लेकिन याद रखिए कि नीयत दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। ये दुआ करें हमारी नीयत ठीक हो जाए। आप कोई भी काम करें, घर का काम करते हैं ना, सुबह उठते ही खाना पकाना जो कुछ भी है, नीयत कर लें अल्लाह ने ये जिम्मेदारियाँ दी हैं। जैसे बीवी इसलिए तैयार हो कि मेरा शौहर मुझे देखे तो खुश हो, नीयत बदल गई। आप अपने घर को साफ करते हैं क्योंकि अतहूरु शत्रुल ईमान, कि सफाई निसफ ईमान है, आपकी नीयत हो गई। आप खाना पकाते हैं, एक तो आप रोते धोते पकाते हैं और एक आप इसलिए पकाते हैं कि अल्लाह ने कहा थे मुत्ताम, खाना खिलाओ भूखों को। तो चंद भूखे भी आने वाले हैं जिसमें एक का नाम शौहर है और दो चार का नाम बच्चे है, हाँ खिलाइए। नीयत बदल लीजिए, आपका पूरा दिन इबादत बन जाएगा अल्लाह की तौफीक से। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। कुछ सवाल नीयत से बारे में, जो भी बात हुई उसके मुतालिक? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक देखते हैं। फतलुन निकाह, निकाह की फजीलत, यानी इसमें हम देखेंगे कि निकाह का क्या फायदा, बेनिफिट्स ऑफ द निकाह या मैरिड लाइफ, इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। पहली बात क्या है, निकाह से इंसान के अंदर शर्म और हया आती है। दूसरी बात, निकाह इंसान को बदकारी से बचाता है। इसकी दलील क्या है? हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने हमसे फरमाया, ऐ जवान लोगो, तुम में से जो इस्तेतात रखे वो निकाह करे, इसलिए कि निकाह आंखों में शर्म पैदा कर देता है और शर्मगाह को जिना से बचाता है। और जो शख्स खर्च करने की ताकत ना रखे वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा इसकी ख्वाहिश नफ्स को खत्म कर देगा। इस रिवायत को मुस्लिम ने नकल किया। यहाँ देखिए कि हमें निकाह के दो बेनिफिट्स मिले। नंबर एक, शर्मो हया पैदा करता है। वो कैसे? देखिए कि सिंपल सी बात आपको बता देती हूँ कि आपको भूख लगी हुई थी और आपको खाना मिल गया, आप घर से खाना खा के निकले, आप गए बाहर, वहां खूब मजे मजे के खाने हैं, खुशबुएं भी हैं। आप बताइए कि आप एक लुकमा भी तोड़ेंगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि आपका पेट तो भरा हुआ है। आप किसी के घर जाएं और बस जो भी घर में था पेट भर लिया, लेकिन आप किसी के घर गए तो वहां बिल्कुल आपकी फेवरेट चीज पड़ी हुई थी, फिर आप कहते हैं खा नहीं सकती, भूख नहीं है। तो जिस तरह घर में इंसान की जिनसी ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो बाहर की औरतों में नजर ही नहीं पड़ती, ठीक है, ये शर्म हया पैदा हो गई ना, फिर नजरें झुकने लगती है। और दूसरी बात यह है कि बदकारी से बचाता है। जब आपको जायज तरीके से एक चीज मिल जाएगी तो फिर आप उसको नाजायज से क्यों लेंगे? तो इससे हमारे लिए अमल के, जब भी इंसान को भूख लगती है तो हम खा लेते हैं ना फौरन, हालांकि फौरन नहीं खाना चाहिए। साइंस आपको क्या कहती है कि थोड़ी देर खाली रखें पेट को, फिर जिस्म के अंदर कुछ इस किस्म के एनालिसिस होते हैं कि जिससे हमारे स्टमक की सब फासिद मादे निकल जाते हैं, फिर फूड खाते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो ज्यादा हेल्दी होगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आपको ये महसूस होने लगे कि हमारे बच्चों में ऐसी कैफियत आ रही हैं, तो पहली बात है कि अभी वो उस उम्र में पहुंचे नहीं है, मसलन 12 14 15 साल की उम्र या उससे भी नीचे की, अभी समझ नहीं। अब 12 साल का बच्चा शादी तो नहीं कर सकता ना, या उनको ये तो नहीं करते, तो फिर आप क्या करेंगे? उन मीन्स को ख़त्म करेंगे जिससे जज्बात उभरते हैं। फिर इसकी भी मिसाल खाने से दे देती हूँ कि आपको पता है कि खाना 8 बजे खाना है, लेकिन अभी 5 बजे हैं, अब घर में खुशबुएं आ रही हैं, खाने पक रहे हैं, कहीं आपने मट्टी से जाके रखी हुई है, तो देख देख भूख लग जाती है ना। समटाइम हम सोचते हैं हमें भूख नहीं लगी हुई, लेकिन जब हमारे सामने कोई ला के रखता है तो थोड़ी देर बाद हमारा भी मूड बन जाता है, तो हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जिन माशरों में, और जिन माशरों से मुराद सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में रहने वाले नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले वो लोग जो उस तरीक़ेकार से अपने आप को जोड़े होते हैं, जहाँ हर वक्त चर्चे ही ये हैं। मैगजीन उठाओ तो गंदी तस्वीरें हैं, मीडिया को देखो तो उसमें नाचती फुदकती तस्वीरें हैं, आप सॉन्ग सुन लेते हैं तो उसमें जज्बात को भड़काने वाली बातें हैं। तो फिर ये कैसे नहीं होगा कि 8 9 साल की उम्र में लड़के लड़कियों के कनखियों से इशारे होने लगे जो कि अभी उनको चीजें मिल नहीं सकती। तो लिहाजा इसमें भी अब साथ ही साथ वही चीज को लेके आइए कि अगर हम अभी अपने बच्चों की शादी नहीं करना चाहते, अभी हमने एक कैद लगाई कि उसने पढ़ना है, उसने अभी ये डॉक्टर बनना है, अभी लड़का, उसने घर बनाना है, गाड़ी बनानी है, शौक से कीजिए, तो फिर आप माहौल ऐसा फितरी रखिए कि जिससे ये ख्वाहिशात ना पैदा हो। मसलन आप देखिए कि जब बंदा अपने जिस्म की एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है ना, तो फिर उसको इन चीजों की ख्वाहिश नहीं रहती। जो लोग मेहनत करते हैं, जैसे खुले मैदानों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उनमें ये चीजें कम होंगी क्योंकि उनकी जिंदगी में हार्ड वर्क बहुत है। हमारे लाइफस्टाइल का मामला बिल्कुल फर्क है। नंबर एक कि हमारे कल्चर में मेहनत नहीं है, यानी फिजिकल काम नहीं करते, बर्तन धोएं कपड़े धोएं हमारे कभी भी गंदे नहीं लगते, बस चीजें लानी निकालनी डालनी पड़ती हैं। बच्चों की लाइफ को देख लीजिए कि बच्चों की जिंदगी में हार्ड वर्क है कोई नहीं, और खाना कैसा है? प्रोटीन एडेड, कैल्शियम एडेड, हाइजीनिक ऑर्गेनिक फूड। फूड हम उनको फुली सेचुरेटेड देते हैं जिसकी वजह से जिस्म की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, लेकिन अब उसको बाहर एग्जॉस्ट करने का रास्ता नहीं है। तो फिर वो नतीजा क्या होता है कि वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे मोटे होते हैं बल्कि अखलाकी और नफसियाती तौर पे भी उनके अंदर ये चीज़ें भरने लगती हैं। तो इंशाल्लाह ताला इतनी बात को अब सुनते हुए हम माँ होने के नाते, बहने होने के नाते, और अगर हम खुद इस एज में अभी 8 9 साल के हैं और हम ये बात सुन रहे हैं, तो अपने फूड को कंट्रोल कीजिए। अगर आपको अपने अंदर ऐसे जज्बात दिख रहे हैं तो आप ऐसी चीज़ों को देखना सुनना छोड़े, और दूसरी बात यह है कि आप अपने फूड को बिल्कुल लाइट करें, नेचुरल फूड दिया करें। आप भी माएं भी अपने बच्चों को बिल्कुल नेचुरल फूड दें जिससे वो अपने आप को बहुत ज्यादा हैवी महसूस ना करें। अगली बात देखिए कि निकाह जिनसी आलूदगी, जिनसी हैजान और शैतानी ख्यालात और अफाल से महफूज रखता है। मुश्किल से लफ्ज है। जिनसी आलूदगी क्या है कि सेक्सुअल थिंकिंग्स, यानी जिस्म के अंदर जो सेक्सुअल थॉट्स आती हैं, और हैजान से मुराद इमोशनलाइज होना है, जिस्म के अंदर एक किस्म की हेजिटेशन सी होने लगती है, जैसे आप कह लीजिए कि एक प्रेशराइज इंसान फील करता है, और गंदे ख्यालात। और आज देखिए कि शिकम और शर्मगा, ये दो के तकाजे पूरे किए जाते। शिकम क्या है? पेट। और शर्मगा क्या है? यानी या तो पेट की पूजा कर रहे होते हैं या नफ्स की पूजा करते हैं, और ये दो काम जानवरों के होते हैं। फिर वही नजरिए को साथ साथ लेते जाइएगा कि ये दो काम जानवर करते हैं, खा लिया पी लिया और सेक्स कर ली। आज भी दुनिया में यही है कि ईट ड्रिंक बी मैरी, ऐश करो मौज करो। हदीस देखेंगे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जब किसी आदमी को कोई औरत खूबसूरत लगे और इसके दिल में इसकी मोहब्बत आए, तो इसे अपनी बीवी के पास जाना चाहिए और इससे सोहबत करनी चाहिए। ऐसा करने आदमी के दिल से इस औरत का ख्याल जाता रहेगा। देखिए, पहली बात तो यह कि इस हदीस को पढ़ते ही मेरे दिल में अल्लाह के नबी सल्लम के लिए बहुत मोहब्बत आई, और मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के नबी कितने खूबसूरत साइकाट्रिस्ट भी थे। पहली बात है कि इंसानों की इस दुनिया में रहते हुए ये नामुमकिन है कि एक औरतों का जहान बना दिया जाए और एक मर्दों का। हम टाइम बाउंड कैफियत से ये कर सकते हैं, मसे इस वक्त हम कहें कि इस हॉल में सारी सिस्टर्स आ जाएं और दूसरे हॉल में सारे ब्रदर्स चले जाएं, मुमकिन है। आप शादी में भी सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि ये औरतों का है ये मर्दों का है, स्कूलों में भी कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं जहां आप एक लिमिटेड टाइम बाउंड है। तो मैं ये कहूं कि मुझे सुबह से लेकर रात तक, या मुझे अपनी जिंदगी में कभी कोई मर्द दिखे ना जो गैर महरम है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। उसके लिए रात जलतों में आएगी। फिर दूसरी बात है, जो ही इंसान की किसी ऐसी दुनिया में निकलते हैं जहां दोनों सेक्स हैं, तो शैतान फुदक के दिल में आके ख्याल डाल देता है। तो जब भी कभी ऐसा मामला आए कि बाहर फ्रस्ट्रेशन बहुत हो, और देखिए जो इस्लाम माहौल देता है ना, वो बड़ा फितरी सा माहौल है, लोग एक बहुत शोशा छोड़ते हैं। हम ना तो इस वक्त सऊदी अरब की हिमायत में ये बात कर रहे हैं ना मुखालफत में, लेकिन लोगों की कही हुई बात है कि लो जी सऊदी अरब वाले वो क्या बाहर तो काले बुरके पहनते हैं, आपको क्या पता है अंदर उन्होंने क्या पहनना होता है और उनके घरों के क्या हालात है। तो जवाब उसका ये है कि शुक्र है बाहर पहन के बहुत सारे मर्दों को दावतें गुना तो नहीं मिलती, अंदर क्या, फिर तो हमने अपने कपड़ों के अंदर भी जिस्म हमारा खुला हुआ है। तो इसलिए इस बात को और ज्यादा बुरा समझना कि जी ये मुनाफिक है। मिसाल है जी, ये कुछ लोग कहते हैं कि जी वेस्ट वाले कम से कम वो मुनाफिक तो नहीं है ना, उनका पता चलता है वो क्या बुराई करते हैं, तो हमारे मुल्क वाले तो मुनाफिक हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दे के आगे चलती हूँ कि आप किसी शहर में जाएं और वहां गटरों के ढक्कन उठे हुए हो और सारी गंदगी दिख रही है, तो लोग कहें भाई ये क्या, कह दी हम मुनाफिक नहीं है कि हम गंदगी छुपाएं। बात मेरा समझ आ गई है? जो लोग वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न कंट्रीज की खूबसूरत सड़कों से बड़े मुतासिर दिखते हैं, हर वक्त उनके गुण गाते हैं, कसीदे पढ़ते हैं, और उनसे कोई बात कर दी जाए उनके खिलाफ तो दिल टूट जाते हैं उनके, उनको उनके अखलाकी गटर नहीं दिखते कि सड़कों पे चलते हुए क्या देखना पड़ेगा या साइंस पे क्या दिखना पड़ेगा। तो असल बात यह कि कभी भी ऐसा कोई जज्बा आ जाए तो फिर इंसान के पास उसका कोई आउटलेट होना चाहिए। इसीलिए इस्लाम कहते हैं, आप देखिए कि ये चीजें किस चीज की हिमायत में है। आज के कल्चर को नहीं देखें कि जहाँ 18 20, बल्कि हमारे कल्चर में अमूमन लड़के की शादी 20 से 25 साल के बीच में होती है ना, और लड़की की मोस्टली मेरा ख्याल अपन 16 से लेके 20 22 साल में होती है। अब ये हमारी मर्जी है कि हमने 20 साल के लड़के को भी बीवी नहीं दी, हमने अभी 25 साल के मर्द को बीवी नहीं दी, लेकिन इस्लाम ने कहा कि जब किसी मर्द में ऐसी ख्वाहिश है, कोई औरत है किसी बात चलते नजर पड़ गई, तो वो अपनी तस्कीन अपनी बीवी से हासिल कर ले और इससे फिर ख्याल चला जाएगा। फिर इसके इससे ये भी पता चलता है कि इस्लाम जज्बात को मारना नहीं चाहता, ये लिख लीजिए, इस्लाम जज्बात को ख़त्म नहीं करना चाहता बल्कि उनको चैनलाइज करना चाहता है। अगर लफ्ज जज्बात लिख के देखिए ये क्या है, देख सकते हैं कि जज्बे ना हो और शोहर बीवी भी साथ हो तो भी कोई ख्वाहिश नहीं होती पैदा। इमोशंस कितनी बड़ी बात है, कितनी सिस्टर्स हैं जो कहती हैं हमारे शोहरों को हमें कोई कशिश ही नहीं, हम साथ रहते हैं लेकिन बस काम कर रहे हैं और दुनिया का काम चल रहा है, हम में मर्दों मर्दों में कोई हमें अट्रैक्शन नहीं। तो किस चीज़ की कमी है, क्या सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, होते हैं, क्या असबाब नहीं है, कमी किसकी, इमोशंस की कमी है। तो जज्बात को बुरा कैसे कह सकते हैं, जज्बात तो जिंदगी की बुनियाद है, जज्बात से ही के नतीजे में तो बच्चा पैदा होता है। तो उन जज्बात को चैनलाइज कर दो, सही चीज की तरफ ले आओ उसको। फिर अगली रिवायत है, हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब औरत बेपर्दा सामने आती है तो शैतान की सूरत में आती है, लिहाजा जब तुम में से कोई औरत देखे और वो उसे अच्छी लगे तो इससे चाहिए कि अपनी बीवी के पास आए, क्योंकि इसकी बीवी के पास भी वही चीज है जिस औरत के पास है। इसे तिर्मिजी ने रिवायत किया। अल्लाह अकबर, कितनी खूबसूरत बात, पहले से भी खूबसूरत बात है ये। और वो क्या है कि बीवी के पास भी वही है जो दूसरी औरत के पास है। यहाँ हम थोड़ी सी बात करेंगे कि शक्लो सूरत के एतबार से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं शायद ही कोई एक दूसरे से 100% मिलता हो, रिश्तेदारी भी हो तो कुछ ना कुछ असर होता है लेकिन पूरा तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल इसी तरह देखिए कि फिजिकली हम में से कोई लंबा कोई पतला कोई मोटा कुछ भी है, लेकिन एज अ ह्यूमन हम सब का इनसाइड एक है। हम में से कोई ये नहीं कह सकता शायद मेरा एक ही गुर्दा हो, शायद मेरे जिस्म में दो दिल हो, नहीं कह सकता ना, अंदर से हम सब एक है। जब किसी औरत की खूबसूरती मर्द को लुझाए और लुभाए तो उसको फौरन सोचना चाहिए कि इसमें कमी क्या है। इमाम इब्ने कय्यम या इमाम इब्ने जुज़ी का एक बड़ा खूबसूरत मैंने कॉल पढ़ा ये साथ ही साथ इस मौजू पे भी, कि जब औरतें बेपर्दा सामने आती हैं और मर्दों के ईमान को खराब करती हैं तो उनको क्या सोचना चाहिए। कहते हैं मर्दों को खिताब करके, कहते हैं कि जब तुम्हें कोई लड़की खूबसूरत लगे, किसी औरत का हुस्न मुतासिर करे और दिल चाहता है ना कि इंसान अब इससे फायदा उठाए, तो फिर उस वक्त उसकी गंदी चीजों को सोचे, उसके पेशाब को सोचे, उसके जिस्म से उठने वाली बू को सोचे, तो फिर उसके अंदर उसकी अट्रैक्शन कम होगी। सच है कि झूठ, कि जब भी किसी में भी आपको कशिश हो, गोरा चेहरा पतला फिगर कुछ है, लेकिन सोचिए कि ये औरत भी दिन में 2 3 बार तो बाथरूम में जाती होगी ना, सुबह जब सो के उठती तो इसके भी मुंह में से बास आती होगी, तो इससे फिर कशिश कम होगी। बिल्कुल यही चीज जो अभी इस वक्त एक औरत के नाते से हम देख रहे हैं ना, ये आज की इस सिविलाइजेशन के चेहरे से हटाने वाली बात है। बाहर गोरी पतली और खूबसूरत चमकती हुई चीजें हमें दिखती हैं, लेकिन उनके अंदर तो बहुत गंदगी है ना। तो लिहाजा ऐसे वक्त में फिर उसको अपने अपनी बीवी से फायदा उठाना चाहिए। फिर दूसरी बात इसमें देखिएगा कि जब औरत बेपर्दा होती है तो शैतान की सूरत में आती है। कैसे? देखने में को वो शैतान लग रही होती है कि जिसके सर से सींग, सर पे सींग है और मुंह से आग निकल रही है और वो हा 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 कर रही है। किसी ने किसी से सवाल किया कि शैतान की असल शक्ल क्या है, मेरे से एक बच्चे ने किया। तो मैंने कहा कि आपको कैसा लगता है, आपके जहन में कैसा आता है? तो उसने कहा बहुत बुरा, खतरनाक, ये वो डरावना। तो मैंने कहा अगर वो इतना डरावना होगा तो लोग उसको देख उसकी बात क्यों मानेंगे? शैतान तो बड़ा खूबसूरत है, वो तो लिपड़ी छुपड़ी औरत की तरह खूबसूरत औरत की भी आता है। नबी सल्लम जब सफरे मेराज पे थे तो आपको मुख्तलिफ चीजें दिखाई गई थी, तो उसमें आपको एक बड़ी खूबसूरत औरत दिखी बड़ी, और वो आपको अपनी तरफ बुला रही थी, लेकिन आपने उसको माइल उसकी तरफ माइल नहीं, भी आगे चले गए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के नबी आपको पता है ये औरत कौन थी? ये दुनिया थी, ये जो वर्ड दुनिया है ना, अगर आप इसके बुलाने पे पलट आते तो आपकी पूरी उम्मत दुनियादार हो जाती। और शुक्र अल्लाह के नबी ने नहीं देखा, देख लेते तो फिर हमारा क्या हाल होता। हाँ, तो इनके अपने असल रूप होते हैं। तो असल यहाँ शैतान की सूरत में आने से मुराद क्या है कि शैतान का काम आसान करा देती है। हुसन जो है ना औरत में, ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें अट्रैक्शन शैतान डलवाता है जब औरत अल्लाह ताला के दिए हुए निज़ाम को तोड़ती है। यहाँ छोटी सी बात, एक औरत होने के नाते मैं सिर्फ अपने आप को सुनाने के लिए करती हूँ, शायद मेरी किसी और बहन को भी फायदा हो जाए। जब मैं घर से निकलूँ, एक आईना मेरे सामने होना चाहिए, और अमूमन लोगों ने रखे भी होते हैं, जो मेरी अट्रैक्शन है ये आज कितने मर्दों को जिना पे माइल करेगी। देखिए हर औरत जब अपने आप को एक्सपोज करके बाहर निकलती है ना, खुद तो वो कहती है नो आई एम सिक्योर, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप दूसरों के जज्बात में हैजान का सबब तो बने। अल्लाह के नबी सल्लम की एक हदीस है, खुलासा उसका ये है कि जब कोई औरत खूबसूरत खुशबुओं में बसी हुई बाहर जाती है, मर्दों के पास से गुजरती है, तो वो जानिया है, और जो भी मर्द यानी उसकी खुशबू अगर सूंघते हैं और उससे उनके दिल में जज्बात आते हैं, तो उसको चाहिए कि घर जाके वो गुस्ले जनाबत करे। क्योंकि आपने नहीं जिना किया, किसी से करवा दिया, किसी का आपने किया। तो जितनी औरतें अपने आप को मॉडल्स बना के फिरती हैं, जो मीडिया से अपने आप को जोड़े हुए हैं, वो जरूर इस पे सोचे कि हम तो अच्छे हैं अपने दिल में, लेकिन हम कितनों को बुराई पे माइल करते हैं। फिर एक और नुकसान भी होता है कि जब औरतें बहुत एक्सपोज करके बाहर निकलती हैं ना, तो घर में आते ही सीधी सादी बीवी अच्छी नहीं लगती। इस तरह फिर हम कई घरों को तोड़वाने का सबब बनते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन हम अपने आप से कर सकते हैं कि गैर मर्दों के सामने अपने पूरे हुस्न के साथ जब हम निकलते हैं, तो हो सकता है कई घरों में फितना पड़ जाए कि मियाँ कहे जी मुझे अपनी बीवी नहीं पसंद, मुझे तो ऐसी चाहिए। एक एक औरत हुस्न और डेकोरेटी ना हो, खत्म, मर्द के मुकाबले एक स्ट्रेट मर्द, क्या शिक कशिश रही। हाँ, तस्वीर कायनात से है दुनिया में रौनक। एक तो ये था कि औरत मर्द बन जाए, वो भी कोई खूबी नहीं है। दूसरी यह कि बिल्कुल जैसे आज हो रहा है कि अपने पूरे एक्सपोजर के साथ बाहर जाके वो जैसे कहते हैं ना कि वाइब्रेशन पैदा करें, जहाज़ों में आप जाते हैं तो वो फौरन आपको कहते हैं कि आप अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दें, इससे जहाज़ के नेविगेशन सिस्टम में खलल पड़ता है, सुनते हैं ना, फिर हम सब बंद करते हैं, फिर वो ऊपर चढ़ते हैं, फिर वो अनाउंस करते हैं आप खोल लीजिए। तो जिस तरह हमारे इलेक्ट्रॉनिक से वाइब्रेशन आती है, तो जहाज सीधा जाने की बजाय इधर उधर हो सकता है ना, इसी तरह हम औरतें जब अपने आप को एक्सपोज करके बाहर निकलती हैं, तो फिर दुनिया के निजाम में ये गड़बड़े शुरू होती हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक कचरे का थैला अगर आप बाहर रोड पे फेंक दें, तो आपको सिखाया जाता है कि आप पोल्यूशन का सबब बन रही हैं। आपकी गाड़ी के बम्पर में से धुआं उठे तो लोग कहते हैं जी इस गाड़ी को रोड पे नहीं ला सकते कि आप पोल्यूशन दे रहे हैं। तो वो सोसाइटीज और हम जैसे लोग फिर उस वक्त ये क्यों नहीं सोचते कि जब एक औरत अपने आप को और एक मर्द अपने आप को इस तरह एक्सपोज करके निकलते हैं, तो वो दुनिया में कितना डिसऑर्डर पैदा करते हैं। बहुत सारी इसकी मिसालें हो सकती हैं, लेकिन बात को समझने के लिए काफी है कि इंसान अपने आप को वहां एक्सपोज करे जहां से कुछ मिलना। देखिए सिंपल सी बात है, अमूमन वो चीजें खूबसूरत करके दिखाई जाती हैं जिनको बेचना होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? बेचने वाले दुकानदार अपनी दुकानों को खूबसूरत साफ करते हैं, शीशे लगाते हैं, लाइटें, क्यों? कि हमारी चीजें खूबसूरत लगे, बेचना होता है। दूसरी, हम वो चीज अमूमन सजाते हैं जो हमने किसी को गिफ्ट में देनी होती है, कि चलो चीज तो आम सी है, थोड़ा सा रैपिंग पेपर अच्छा यूज कर लेते हैं, फूल वगैरह लगा देते हैं ताकि उसको पेश करें। तो पूछिए कि औरत क्या बिकाऊ माल है जो अपने आप को सजा सवार के बाहर पेश करे? और क्या ऐसी औरत जो मर्दों के पास जाती है और उसको उसके जज्बात में बिगाड़ डालती है, क्या वो उसके लिए अपने आप को गिफ्ट के तौर पे पेश करना चाहती है? अल्लाह ने मर्द के लिए औरत को क्यों पैदा किया कि बाहर को छोड़िए, घर के अंदर औरत अपने आप को सजाती है, साफ सुथरा रखती है, मर्द के आने पे इहतमाम करती है, कुछ मिलेगा ना? अगर मर्द को उस पर प्यार आएगा तो बीवी को फायदा होगा ना? अगर मर्द बीवी में कशिश महसूस करेगा तो दोनों सेटिस्फाइड होंगे। तो गोया कि आपने जितना सजाया अपने आप को, जितना संवारा, आपको उसका रिटर्न मिल गया। तो जहां से कुछ मिलना होता है वहां करने देने की जरूरत है, जहां से मिलना कोई नहीं। अमूमन हम देखिए जहां जाते हैं बाहर एक्सपोज करने, बाज लोग कहते हैं नहीं जी हम मर्दों के लिए नहीं कर रहे, हम दूसरी औरतों को दिखाने के लिए पहन ओढ़ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। तो सच बताइए कितनी औरतें हैं जो दूसरे को अच्छा पहनना ओढ़ना ओढ़ा दे के खुश होती हैं, उनके दिल में तो पता नहीं क्या कुछ औरत है कि हाय ये तो मेरे से भी अच्छी लग रही हैं। लेकिन ये समझिए कि जहाँ फितना नहीं है वहाँ आप एक्सपोज करें, और जहाँ फितने का डर है वहाँ अपने आप को छुपा लें। हमारे कंप्यूटर के अंदर कितनी तारें हैं, लेकिन ऊपर ये प्लास्टिक की चीज़ क्यों लगी हुई है? ये सिक्योर कर रही है ना? अगर ये डैशबोर्ड और कीबोर्ड है, इसके ऊपर प्लास्टिक ना हो तो हाथ लगे तो करंट लगेगा ना? ये मेरे सामने जो माइक है इसके ऊपर ये प्लास्टिक का क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसके अंदर बिजली है। नंगा तार बिजली का हम नहीं छू पाते क्योंकि उसको उसके ऊपर कोडिंग कर दो। तो फिर इसी बात से समझ लीजिए कि इससे भी ज्यादा खतरा है जब हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं ऐसी जगहों पे जहां जहां नहीं करना चाहिए।